मेरी दृष्टि में कंजनैनी में संबद्ध चित्र उससे अधिक प्रभाव उत्पादन क्षमता रखता है। केवल अनुभव विधान से ही चित्र की श्रेष्ठता नहीं स्वीकार की जा सकती। चित्रों की उत्कृष्टता चित्र होने में नहीं है, क्योंकि चित्र साधन है, साध्य नहीं। साधन के रूप में उनकी सफलता असफलता का निरूपण भी किया जा सकता है। चित्रों के माध्यम से अनेक अनुकूल प्रतिकूल भावों को प्रभावपूर्ण ढंग से अंकित किया जा सकता है। कवि जितने ही सूक्ष्म और जटिल भावों को संतुलित कर सकेगा, चित्र उतना ही काव्योपम और श्रेष्ठ होगा। कंजनैनी दोहे में एक विशेष मुद्रा में नायिका का नायक को देखना, चित्र की अनेक भावनाओं को आशा निराशा राग विराग चिंता उत्सुकता उत्कंठा को कुरेद देता है, जो उक्त दोहे द्वारा संभव नहीं है। बिहारी के इस प्रसिद्ध दोहे को भी देखें। कहा लड़ैते दृग करे परे लाल बेहाल, कहूँ मुरली कहूँ पीत पट कहूँ मुकुट बनबाल। एकमात्र अस्त व्यस्तता का चित्र नहीं है, आँखों की प्रभाव उत्पादकता की अनुभूत्यात्मकता सघनता का चित्र है, नायक की प्रेम विह्वलता का चित्र है। प्रेम विह्वलता का यह आतिशय आँखों के सौंदर्य और प्रभाव का सूचक है। चित्रों में जहाँ सांकेतिकता कम और अभिध्यात्मकता अधिक हो गई है, वे चित्र प्रायः निष्प्रभ हो गए हैं। भाव ऊंचे आचर उल्टी मौर मोरी मुह मोरी नीठी नीठी भीतर गई डीठी डीठी सो जोरी। वर्ण चित्र कवि भावों को समृद्ध करने के लिए रंगों का प्रयोग करता है। रंगों के उपयोग से चित्र की व्यंजकता भी बढ़ जाती है। वह प्रकृति में बिखरे हुए नाना रंगों में से अपने अनुकूल रंगों का चयन करता है। कभी वह अनुरूप वर्ण योजना से नायिका के सौंदर्य को आकर्षक बना देता है, तो कभी विविध रंगों के आनुपातिक मिश्रण से सौंदर्य को उभार देता है। कभी वह प्रतिकूल वर्णों को सामने लाकर प्रिय के सौंदर्य को चटकीला बनाता है, तो कभी वर्ण परिवर्तन से उसकी मानसिक परिस्थिति का भावात्मक बोध कराता है। इस प्रकार के वर्ण चित्रों के निर्माण में बिहारी अद्वितीय हैं। अनुरूप वर्ण योजना अनुरूप वर्ण योजना के अंतर्गत वे चित्र आते हैं जिनमें बहुत कुछ मिलते जुलते रंगों का प्रयोग इस ढंग से होता है कि सौंदर्य में नवीन आकर्षण आ जाता है। भाई जुतन छवि बसन मिली बरनी सके सुन बैन आंग ओप आंगी दुरी आंगी आंग दूरे ना। नायिका संदली अंगिया पहने हुए है, उसके शरीर के रंग से कपड़े का रंग ऐसा मिल गया है कि कपड़ा लक्षित ही नहीं होता। अंग की चमक में अंगिया छिप गई है, किंतु अंगिया से अंग नहीं छिपता। अतः इस समय नायक को नायिका की अद्भुत छवि दिखाई पड़ेगी। नायिका की जिस अद्भुत छवि की व्यंजना इस दोहे से होती है, वह चमत्कारिक होने के साथ साथ रीतिकालीन सामंतीय मनोवृत्ति के कितने अनुकूल है। वर्णों का मिश्रण वर्णों के मिश्रण में कवि के दोहरे व्यक्तित्व दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। एक ओर उसे चित्र विशेष के लिए अनुकूल रंगों का चुनाव करना होता है, तो दूसरी ओर रंगों के आनुपातिक मिश्रण पर ध्यान देना पड़ता है। बिहारी और देव में विभिन्न रंगों के मिश्रण की कला विशेष रूप से दिखाई देती है। इनमें भी रंगों की छायाओं की अद्भुत पकड़ में बिहारी की दृष्टि अचूक है। बिहारी के रंग परिज्ञान तथा उचित रंगों के मेल की क्षमता सतसई के पहले दोहे से ही परिलक्षित होने लगती है। इस दोहे में राधिका की शोभा सौंदर्य और अंगदुति को उभार कर सामने रखना ही कवि का मुख्य प्रयोजन है। इसी तरह कई रंगों के मेल से बांसुरी का इंद्रधनुषी शोभा देखिए। अधर धरत हरि के परत ओठ डिठी पत जोटी हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। वह संधि की अवस्था को बिहारी ने धूप छाह के रंग में देखा है। छुटी न सिसुता की झलक झलक क्यों जोबन अंग दीपति देह तुहु न मिली दीपत ताफता रंग। धूप छाह के संकेत से वह संधि की शोभा कितनी भावपूर्ण हो गई है। विरोधी वर्ण योजना विरोधी रंगों की योजना से भावात्मक चित्रों के उड़ेने का प्रयास पूरे रीतिकाल में कम मिलेगा, किंतु बिहारी ने इस ढंग से भी नायिका की छवि का पूर्ण अंकन किया है। छिप्यो छबीलो मुख लसय नीले अंचल चीर मनाव कलानिधि झल मलय कालिंदी के नीर। सोन जुही सी जग मगय अंग अंग जोबन ज्योति सुरंग कुसुम्भी चुनरी दुरंग देह दुति होती। प्रथम दोहे में नीले श्वेत रंग का विरोध है और दूसरे में पीले और लाल का। एक में उक्त विषया वस्तु प्रेक्षा और दूसरे में पूर्णालंकार द्वारा चित्र को खूब अच्छी तरह निखार दिया गया है। पहले में रूपाधायक अंश मुख्य है तो दूसरे में संपूर्ण अंग की कांति। इस तरह नायिका की जगर मगर करती हुई अंग ज्योति उसके सौंदर्य को प्रतिभासित कर जाती है। जहाँ केवल चमत्कार प्रदर्शन की दृष्टि से बिहारी ने रंगों का प्रयोग किया है, वहाँ चित्र काव्योत्कर्षम नहीं बन पड़े हैं। जटित नीलमणि जगमगति सिंक सुहाई नाक मनाव अली चंपक कली बसी रस लेतु निशांक। नायिका की शोभायुक्त नाक में नीलम जड़ी सींक जगमगा रही है, मानो भौरा निसंक भाव से चंपे की कली पर बैठा रस ले रहा है। इसमें नील पीत रंगों के विरोध से नायिका की शोभा वर्णित है, पर इससे कोई भाव चित्र नहीं उभर पाता। वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन मनः स्थितियों का प्रकाशक सहज कायिक व्यापार है। किसी मर्मस्पर्शी बाह्य घटना का प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा पड़ता है कि उससे चेहरे का रंग तत्काल बदल जाता है। कभी वह लाल हो जाता है तो कभी पीला, कभी सफेद हो जाता है तो कभी काला। यह परिवर्तन इतना सहज और आकस्मिक होता है कि उससे घटना विशेष का संबंध जोड़ लेने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। मानसिक व्यापारों का शरीर से गहरा संबंध है। मानसिक व्यापार शरीर पर गहरे प्रभाव छोड़ जाते हैं। प्रेम प्रसंगों में जो रंग आता है वह लाल होता है। इस ललाई की गणना अनुभवों के अंतर्गत होनी चाहिए। पश्चिम के कवियों ने चेहरे की लज्जा जन्य ललाई का प्रचुर वर्णन किया है। रीतिबद्ध कवि प्रायः गिने गिनाए अनुभवों के चतुर्दिक चक्कर लगाते रहे, फिर भी उनमें वर्ण परिवर्तन के कुछ अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। बिहारी की नायिका का वर्ण परिवर्तन देखिए। पहिरत ही गोरे गरे यो दौरी दुतिलाल मनो परसी पुलकित भई मौल श्री की माल। नायक ने मौल श्री की माला सखी द्वारा नायिका के पास भेजी है। सखी नायिका को माला पहनाकर आई है और वह नायक से नायिका की दशा का वर्णन करती है। गोरे गले में माला पहनते ही वह लज्जा से लाल हो गई। यह ललाई उसकी प्रेमानुभूति की द्योतक है। लज्जा के कारण लाल होने का एक अत्यंत सुंदर चित्र देखिए। ज्यों ज्यों परसत लाल तन त्यों त्यों राखत गोए नबल वधु डर लाज तैं इंद्र वधु सी होए। नायिका नवोढ़ा है। नायक ज्यों ज्यों उसके शरीर का स्पर्श करता जाता है त्यों त्यों वह संकुचित होती जाती है। वह डर और लज्जा के कारण इंद्रवधु के सदृश से बन जाती है। इंद्रवधु को छू दीजिए कि वह छुई हुई हुई। उसका लाल रंग नायिका की लज्जा को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ है। इंद्रवधु शब्द वस्तुतः उपलक्षित चित्र योजना के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से लज्जा के समस्त व्यापार विवृत हो उठते हैं। शरीर के रंग से नायिका की माला का रंग बदल गया है, पर अज्ञात यौवना होने के कारण उसे इसका पता नहीं चलता। इस वर्ण परिवर्तन का अत्यंत नैनाभिराम चित्र बेनी प्रवीण ने खींचा है। कालहई गूथी बबा की सौम्य गजमोतिन की पहिरी अति आला आई कहाते इहा पुखराज की संग गई जमुना टट बाला। नहात उतारी हौ बेनी प्रवीण हसे सुनी नैनन बैन रसाला जानत ना अंग की बदली सब सो बदली बदली कहे माला। नायिका के गले में जो गजमोतियों की माला पड़ी है उसका रंग बदल गया है। इस पर वह बेहद हैरान है। बाबा की शपथ है कि मैंने अभी कल ही तो गजमोतियों की एक सुंदर माला पहनी थी, किंतु यह पुखराज की माला कहाँ से आ गई? कहीं यमुना तट पर स्नान करते समय किसी की माला से यह बदल तो नहीं गई? उस बेचारी मुग्धा को क्या पता कि शरीर की पिताब छाया के कारण गजमुक्ताओं की श्वेत माला का रंग कुछ इस प्रकार बदल गया है कि उससे पुष्प रागमणियों की माला की भ्रांति होती है। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में कोई दुती नायिका से नायक की प्रेमानुभूति का चित्र खींचकर नायक के मन की ललक को और भी अधिक बढ़ा देने का उपक्रम कर रही है। मतीराम के दोहे में नायिका को विशेष परिस्थिति में डालकर उसे छुई मुई होती हुई दिखाने का अभिप्राय उसके प्रति नायक के आकर्षण को और भी तीव्र बना देता है। बेनी प्रवीण के वर्ण परिवर्तन द्वारा नायिका के सौंदर्य अंकन का प्रयास उससे भिन्न नहीं है। सभी वर्ण योजनाओं द्वारा नायिका के ऐश्वर्य दीप्त आकर्षक और उन्मादक सौंदर्य को प्रस्तुत किया गया है, जो एक ओर साहित्यिक परंपरा से अनुमोदित था तो दूसरी ओर तत्कालीन सामंतीय परंपरा से समर्थित। उपलक्षित चित्र योजना। पश्चिमी साहित्यालोचन में उपलक्षित चित्र योजना की काफी चर्चा हुई है। इसके संबंध से कई सैद्धांतिक ग्रंथों का प्रणयन किया गया तथा कतिपय कवि एवं नाटककारों की व्यवहारिक आलोचना भी की गई। कवियों की अनुभूत्यात्मकता गहराई की परख के लिए उपलक्षित चित्र योजना का विश्लेषण आवश्यक है। उपलक्षित चित्र योजना आलंकारिक होती है। पश्चिमी विचारकों ने इसके लिए रूपक को अत्यधिक महत्व दिया। रूपक के रूप में लाए गए प्रस्तुतों से जो स्पष्टता, संक्षिप्तता और अर्थ विस्तार दिखाई पड़ता है, वह अन्य प्रकार से लाए गए अप्रस्तुतों में नहीं। जहाँ तक काव्यगत सौंदर्य का प्रश्न है, अन अलंकारों के माध्यम से लाए गए अप्रस्तुत भी अपनी जगह विशेष उपयोगिता रखते हैं, पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर रूपक की जो निजी विशेषताएं हैं, उनकी ओर से आंखें नहीं मूंदी जा सकती। उपमा आदि अलंकारों में अर्थ की एक स्पष्ट सीमा होती है, पर रूपक में अर्थ की सीमा विस्तृत होने के साथ साथ कभी कभी प्रतीकात्मक भी हो उठती है। उपमा और रूपक के एक एक उदाहरण लीजिए। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा। वह शेर है, रूपक। उपमा में मुख के लिए ले आया गया चंद्रमा अप्रस्तुत है। इस अप्रस्तुत द्वारा मात्र सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो पाती है, किंतु रूपक के उदाहरण में शेर की वीरता, निर्भीकता, भयंकरता, तेजस्विता आदि अनेक गुणों का समन्वय देखा जा सकता है। उपमा में जो अप्रस्तुत ले आया जाता है, उसका धर्म सीमित और रूपकगत अप्रस्तुत का व्यापक होता है। इस अप्रस्तुत के अनेकानेक धर्मों से हम पूर्व परिचित रहते हैं। इसके नामोच्चारण मात्र से स्मृति में बहुत से संवेदना संवलित अर्थ स्वयं प्रकाशित हो उठते हैं। रूपक मुख्यतः दो कार्य करता है। एक तो वह पाठकों की इंद्रियानुभूति को जागृत करता है, दूसरे एक विचार को रूपायित करता है। रूपकात्मक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है अरूपात्मक भावों और विचारों को इंद्रियानुभूति की सीमा में आने वाले अप्रस्तुतों से संबद्ध करना। इसके साथ ही वह प्रतीक की सीमा का भी स्पर्श करता रहता है। अन्य अलंकारों की अपेक्षा यह जटिलतर संबंधों का प्रकाशक है। काव्यात्मक समूर्तन के लिए आवश्यक है कि इसके लिए जो अप्रस्तुत ग्रहण किए जाएं, उनका चुनाव परिचित जगत से हो तथा वे पाठकों की संवेदनाओं को आंदोलित करने में पूर्ण समर्थ हो। तीसरे, ये एक उपचात्मक अर्थ सांकेतिक करते हैं, पर उसकी पूर्ण अर्थवत्ता इनमें से किसी एक में ना होकर उनके संबंधों में निहित है। किंतु यहाँ पर यह स्पष्ट करना शेष रह गया कि रूपालंकार, रूपकालंकार तथा काव्यात्मक समूर्तन में क्या स्पष्ट अंतर है। वास्तव में समूर्तन रूपक मात्र ना होकर रूपकात्मक होता है। यह अंशों में प्रतीकवत तथा अंशों में संविदात्मक होता है। इनमें पदार्थ विशेष का उतना महत्व नहीं है जितना उनके द्वारा आविर्भूत संवेदना का। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त अप्रस्तुतों को ही समूर्तन अक्षम क्यों माना जाए। उपमा उत्प्रेक्षागत अप्रस्तुत भी तो समूर्तन प्रस्तुत करते हैं और वे पर्याप्त रसक्षम भी होते हैं। यह कहना कि प्रतीकवत प्रयुक्त अप्रस्तुत सर्वाधिक काव्योपम होते हैं बहुत कुछ ठीक है, किंतु यह कि वे ही सच्चे काव्य की कसौटी हैं सर्वथा भ्रामक है। विशेष स्थिति और परिस्थिति जन्य काव्यात्मक स्थल बिना किसी अप्रस्तुत विधान के भी रसोद्बोधन करते हैं, तब प्रतीकवत व्यवहारित अप्रस्तुत को उत्कृष्ट काव्य की कसौटी क्यों स्वीकार किया जाए। यूरोप में जिस समूर्तन बिंब या इमेजरी पर बहुत जोर दिया गया है, उसका सन्निवेश हमारे यहाँ के सादृश्य मूलक अलंकारों में कर लिया जा सकता है। इसलिए उपलक्षित चित्र योजना का पृथक विचार न करके उसे अलंकारों के भीतर गृहित कर लेना औचित्यपूर्ण मालूम पड़ता है। अलंकार योजना। संस्कृत अलंकारिकों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। काव्य के शेष उपकरण इसी के पोषक है। डंडी ने अलंकार को काव्य का शोभाकारक धर्म माना है। अलंकार का शब्दार्थ भी यही संकेतिक करता है। वामन का कथन सौंदर्यम अलंकारः विशेष महत्व रखता है। अलंकार ही सौंदर्य है का तात्पर्य में भेद नहीं करते। वामन का अलंकार रूप का बोधक है और सौंदर्य भावानुभूति का। ऐसी स्थिति में अलंकार योजना के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। रस समाहित चिता, कवि जब अपने मन को रस केंद्रित करता है तो अलंकारों का औचित्यपूर्ण विन्यास अपने आप हो जाता है। आनंद वर्धन ने कहा है, तत् प्रकाशिनो वाक्य विशेषा एव रूप का दयो अलंकारा। रूप का दि अलंकार रस के प्रकाशक हैं। यह तभी संभव है जब वे अंगीभूत रूप में प्रयुक्त हो। संभवतः इसी तथ्य को लक्ष्य करते हुए अभिनव ने उन्हें रसाक्षिप्त और अपृथज्ञ तन्य निर्वत्ते कहा है। कवि अपने भावों और विचारों को पाठकों तक प्रेषणीय बनाता है। भावों और विचारों को पाठकों तक तद्वत प्रेषित करने के लिए उसे अपनी वाणी को असामान्य बनाना पड़ता है, अथवा एक विशेष स्थिति में उसकी वाणी वक्रतापूर्ण हो जाती है। ऐसा होने पर कवि के भाव और अनुभूति दोनों रागात्मक होकर पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भी समान भाव या अनुभूति जागृत करते हैं। अलंकार इस क्रिया में सहायक सिद्ध होता है। रेमंड का विचार भी बहुत कुछ इससे मिलता जुलता है। द वन ट्रूथ अंडरलाइंग ऑल द रूल्स लेड डाउन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिगर्स इज दैट नथिंग इज गेन्ड बाय एनी यूज ऑफ दोज विच डू नॉट एड टू द इफेक्ट ऑफ द थॉट टू विच दे गिव एक्सप्रेशन। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अलंकार वस्तु और भाव की स्पष्ट और राग बोधात्मकता बनता है। जहाँ उसकी प्रधानता हो जाती है वहाँ उसकी राग गुणात्मकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह अंगभूत नहीं हो पाता। अलंकारों को सामान्यतः तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, सादृश्य मूलक, विरोध मूलक तथा साहचर्य मूलक। इसमें सादृश्य मूलक अलंकार ही बिंब या समूर्तन की स्थापना कर सकते हैं। शेष अलंकार मुख्यतः चमत्कार विधायक होते हैं। सादृश्य मूलक अलंकार। सादृश्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, रूप सादृश्य, धर्म सादृश्य और प्रभाव सादृश्य। कहीं कहीं इन्हें अलग अलग रूप में देखा जाता है तो कहीं कहीं समन्वित रूप में। रूप बाह्यकार हैं तो धर्म और प्रभाव अंतःकरण की विशेषता है। केवल रूपाकार को अंकित करने के लिए प्रयुक्त अप्रस्तुत संविदात्मक नहीं होते, जैसे भीड़ के समान कमर। श्रेष्ठ अप्रस्तुत वे ही हैं जो प्रस्तुत के रूप, धर्म तथा प्रभाव से सादृश्य रखते हैं। वस्तुतः प्रस्तुत को रूपायित करने के लिए जिन अप्रस्तुतों का प्रयोग किया जाता है वे हूबहू प्रस्तुत के समान नहीं होते। वे किन्हीं अंशों में प्रस्तुत के सदृश होते हैं, पर अपनी बिंब विधायनी शक्ति के द्वारा उसे चारुता प्रदान करते हैं। उपमागत अप्रस्तुत रूपकगत अप्रस्तुत की अपेक्षा कम संवेगात्मक होता है। उत्प्रेक्षा में चमत्कारवादिता अधिक होती है। एक ही अप्रस्तुत का प्रयोग तीन अलंकारों में किया जा सकता है, पर उसकी अर्थगत सघनता में अंतर आ जाता है। पहले उपमागत कुछ अप्रस्तुतों के उदाहरण देखिए। पहला, लह लहाती तन तरुणई, लची लगी लौ लफी जाए। दूसरा, कांटे सी कसकती ही है वह कटीली भौं। तीसरा, वाही तन ठहराती यह किबल नुमा लौ डीठी। चौथा, सट पटाती सी ससी मुखी, मुख घूंघट पर ढांकी, पावक झरसी झमकी, कै गई झरों के झांकी। पांचवा, नीचिय नीची निपट डीठ कुही लौ दौरी। छठा, कौहर सी एड़िन की लाली निरखी सुभाए। सातवा, सहज सेत पचतोरिया पहिरे अति छवि होती, जल चादर के दीप लौ जग मगाती तन ज्योति। आठवा, जाके तन की छाह ढीग जोन छाह सी होती। नौवा, हरी छबी जल जबते परे तबते छिन बिछुरे न, भरत ढरत बूरत तिरत रहत घरी लौ तैन। दसवां, बाल छबीली तियन में बैठी आपू छिपाए, अर्गट ही फानूस सी परगट पर लखाए। ग्यारवां, निस्दिन डारी सी फिरती बाढ़ी गाढ़ी पीर। बारवां, नार सलोनी सांवरी नागिन लौ डसी जाए। तेरवा, नेह दबावत नींद लौ निरखी निसासी नारी। उपर्युक्त सभी अप्रस्तुतों में से अधिकांश नए हैं। इनके नएपन के कारण कोई चाहे तो इन्हें ताजा कह सकता है, पर ताजगी अंतःकरण की विशेषता है, वैचित्र की नहीं। इधर उधर की जुटाई हुई अद्भुत वस्तुओं में एक अजनबीपन पाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि वे ताजगी पूर्ण भी हों। यहाँ पर कवि की दृष्टि अजनबीपन पर ही अधिक टिकी हुई है। तारुण्य भार से दूनी होती हुई नायिका और लगी के लफ जाने में जो धर्म साम्य है वह स्थूल ही कहा जाएगा, फिर भी इससे एक इंद्रिय बिंब उपस्थापित हो जाता है। दूसरे उदाहरण का अप्रस्तुत कोई संविदात्मक बिंब नहीं निर्मित कर पाता। तीसरा, पांचवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा के अप्रस्तुत राग बोधात्मक क्षमता से सर्वथा रिक्त है। किबल नुमा और कूही आँख के जिस पक्ष का सादृश्य प्रस्तुत करते हैं वह वर्णनात्मक है, काव्यात्मकता काव्यात्मक नहीं। गाने बजाने वाला व्यवसायी जो इतस्ततः घूमता फिरता है और वह गाढ़ी पीड़ में व्याकुल नायिका का ऐन्द्रिक चित्र कैसे उभार सकता है। अप्रस्तुत केवल उसका घूमना रूपायित कर पाता है, गाढ़ी पीड़ को चित्रित करने की क्षमता उसमें कहाँ। यहाँ पर तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत का कोई मानसिक संबंध स्थापन भी नहीं हो पाता। एक ही दोहे में कई अलंकारों के निर्वाह की स्पृहा अप्रस्तुतों की बिंब विधायनी शक्ति को चौपट कर देती है। कहाँ नींद और कहाँ स्नेह, कहाँ निशा कहाँ नारी, इसमें तो कोई सादृश्य ही नहीं है। चौथे सातवें और नौवें उदाहरणों को अप्रस्तुत अपनी राग बोधात्मक क्षमता के कारण काव्योपम बिंब निर्मित करते हैं। झरोखे से नायिका का झांक कर झट चला जाना अग्नि की लपट सा मालूम पड़ा। इस अप्रस्तुत में रूप धर्म और प्रभाव तीनों का साम्य है, इसलिए यह अत्यधिक उत्कृष्ट बन पड़ा है। पिताब नायिका के रूप लावण्य की एक झलक को उभारने में पावक झर आत्यंतिक रूप से समर्थ है। आग की लपट का धर्म है पार्श्ववर्ती व्यक्ति को परितप्त कर देना, नायिका का झांकना नायक को विरह व्यथा से पूर्ण बना देना है। यह अप्रस्तुत नायिका की रूप चेतना को पाठकों के मन में अच्छी तरह उभार ही नहीं देता बल्कि उन्हें भी रागानुभूत कर देता है। पीतवर्णी नायिका को पावर झर का साम्य प्रस्तुत करते समय कवि रस समाहित चित्त कहा जा सकता है। जल चादर का दीप भी श्वेत साड़ी के भीतर झांकती हुई नायिका की नई अंग ज्योति की रागात्मक चेतना अच्छी तरह चित्रित करता है। रहट घरी अपने पूर्ण संदर्भ में समर्थ अप्रस्तुत है। रूपकगत अप्रस्तुतों के चुनाव और संदर्भण में बिहारी सबसे अधिक असमर्थ सिद्ध हुए हैं। पहला, नव नागरी तन मूलक लही जोबन आमिल जौर घटी बढ़ी ते बढ़ी घटी रकम करी और की और। दूसरा, कौड़ा आंसू बूंद कसी साकर बरुनी सजल कीने बदन निमुंद दृग मलंग डारे रहत। तीसरा, वेई गड़ी गाड़े पड़ी उपट्यो हार हियना आन्यो मोरी मतंग मन मारो मुरनेन मैन। चौथा, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़गुड़ू इन नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। ये समस्त उदाहरण पांडित्य प्रदर्शन के द्योतक हैं। इनके अप्रस्तुत इतने असक्त हैं कि उन पर टिप्पणी व्यर्थ है। इस असक्तता की व्याख्या आगे की जाएगी। उत्प्रेक्षागत अप्रस्तुत कवि कल्पित होने के कारण अधिक चमत्कारिक होते हैं, पर उनकी सिद्धता इसी में है कि वे बराबर राग बोधात्मक हों। यह अलंकार रीति कवियों का बड़ा ही लाडला अलंकार रहा है क्योंकि इसके माध्यम से नायक नायिका के रूप बोध की संभावना में उन्हें पर्याप्त छूट मिल जाती है। इसका अप्रस्तुत लोक सिद्ध होता है। लोक सिद्ध होने पर वह उपमा के अंतर्गत आ जाएगा। लोक असिद्ध उपमान का चमत्कारिक होना स्वाभाविक है, पर केवल लोक असिद्ध होने के कारण कोई अप्रस्तुत चमत्कार हो जाए यह आवश्यक नहीं है, उल्टे उसे पहली परख हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। पहले बिहारी की इस तरह की उत्प्रेक्षाएं देखिए। पहला, भाल लाल बेदी छय छुटे वार छवि देत गहयो राहु अति आहु करी मनु शशि सूर समेत। दूसरा, नीको लसत लीलाट पर टीको जरित जराए छवि ही बढ़ावत रवि मनो शशि मंडल में आए। तीसरा, तिय मुख लखी हीरा जरी बेंदी बढ़े विनोद सुत सनेह मानव लियो विधु पूरन बुध गोद। पहले दोहे में राहु का सूर्य और चंद्रमा को एक साथ ही ग्रस लेना लोक में असिद्ध है, पर इससे नायिका के भाल बिंदी और उन्मुक्त केश राशि का कोई बिंब नहीं उपस्थित हो पाता। यही बात दूसरे और तीसरे दोहे की उत्प्रेक्षाओं के संबंध में भी कही जा सकती है। ज्योतिष के शास्त्रीय अप्रस्तुत सामान्य जीवन से असंपृक्त होने के कारण पहेली बन जाते हैं, किंतु बिहारी की बहुत सी उत्प्रेक्षाएं ऐसी भी हैं जो काव्य के अत्यंत मनोरम चित्र प्रस्तुत करती हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, पग पग मग अगमन परत चरण अरुण दूती झुली ठौर ठौर लखियत उठे दुपहरिया से फुली। दूसरा, जरिकोर गोरे बदन बढ़ी खरी छवि देखू लसती मनो बिजुरी किए सारद शशि परिबेखू। तीसरा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मनी सैल पर आतप पड़े प्रभात। दुपहरिया के फूल का फूलना लोक सिद्ध है, पर ठौर ठौर पर उसका फूल उठना लोक असिद्ध माना जा सकता है। यहाँ पर जो धर्म साम्य प्रस्तुत किया गया है वह पाठकों की रागोत्तेजना में पर्याप्त सहायक सिद्ध होता है। बिजली अप्रस्तुत है, यह कवि कल्पित अप्रस्तुत जड़ीदार साड़ी में शोभित नायिका की मुख शोभा को इस ढंग से अंकित करता है कि उसके पाठकों की रूप चेतना तीव्रतर हो उठती है। इनके अतिरिक्त कवियों ने इव आदि लगाकर भी उत्प्रेक्षाएं की हैं, जैसे चम चमात चंचल नयन मुख घूंघट पट छीन मानहु सुर सरीता विमल जल उछरत जुगमीन। पर गंगा के विमल जल में युग्मीन का उछलना लोक सिद्ध है, इसलिए सही अर्थ में इसे उत्प्रेक्षा का विषय नहीं माना जा सकता। यूं अपने आप में भी यह प्रस्तुत कोई खास संवेदना बिंब नहीं प्रस्तुत करता। कालिदास का एक बिंब देखिए, जिसमें स्पंदित आंखों का अतिशय संवेदात्मक रूप अंकित किया गया है। रुद्धापांग प्रसर मलकय रंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुनौ विस्मृत भ्रुविलासन विलासम त्वया सनय नयन नयनुमु परस्पंदी संके मृगाचया मीन शोभाचल कुवल यश्री तुला मेष्यतिति। हाय मित्र, जब वे बिखरे बालों से अवरुद्ध कटाक्ष वाले अनजाने नयन ऊपर की ओर फड़केंगे तो उस नील कमल की मोहिनी शोभा धारण करेंगे जो चंचल मछलियों के उद्यम से चटुल हो उठता है। जब मैं मीन छोप से चटुल बने कुवल है की शोभा धारण करने वाले नयनों की कल्पना करता हूँ तो जी में अजब कचोट अनुभव करता हूँ। यह अप्रस्तुत की बिंब निर्माण क्षमता इस बात पर निर्भर है कि वह कितनी गहरी संवेदना जागृत कर सका है। जब अप्रस्तुतों के मूल में गूढ़ संवेग रहते हैं तो वे चित्रकला को व्यापक और गहरा बना देते हैं। विरोध मूलक, इसके अंतर्गत विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों की गणना की जाती है। विरोधाभास में विरोध वास्तविक न होकर आभास मात्र होता है। कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का वर्णन विभावना है। विशेषोक्ति विभावना का उल्टा होता है, अर्थात यहाँ कारण के वर्तमान होने पर भी कार्य नहीं हो पाता। असंगति कार्य कारण विरोध मूलक अलंकार है, इसमें कारण कहीं होता है और कार्य कहीं। अतिशयोक्ति भी मूलतः विरोध मूलक अलंकार ही है। अब सत्सई में प्रयुक्त कुछ उदाहरणों की परीक्षा कीजिए। पहला, तंत्री नाद कबित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। दूसरा, लही रति सुख लगिय हिय लखौ लजौ ही नीठी खुलती न मो मन बंधी रही वह अध खुली डीठी। तीसरा, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। ये विरोधाभास के उदाहरण थे। अब चौथा, रस सिंगार मंजन किए रंजन भंजन नयन अंजन रंजन हु बिना कंजन गंजन नयन। पांचवा, अंग अंग नग जग मगय दीप सिखासी देह दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजोड़ गेह। छठा, सतर भाव रूखे वचन करत कठिन मननी थी कहा करो होय जाती हरी हेरी हसौ ही डीठी। ये विभावना अलंकार के उदाहरण थे। सातवा, जदपि चवाईनी चिकनी चलत चहु दिसि सैन तउ न छाड़त दुहुन के हसी रसीले नैन। आठवा, निसी अंधियारी नील पट पहिरी चली पिय गेह कहो दुराई क्यों दुरै दीप सिखासी देह। लाल तुम्हारे बिरह की अग्नि अनुप अपार सरसै भरसै नी रहूं जरहूं मिटै न झार। विशेष उक्ति नौमा, दृग उर्जत टूटत कुतुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिय दई नई हरीति। दसवा, छिरके नाह नवोढ़ दृग कर पिचकी जल जोर रोचन रंग लाली भई बियतिय लोचन कोर। ये असंगति अलंकार के उदाहरण थे। ग्यारहवा, सुदुति दुराई दूरति नहीं प्रगट करती रति रूप छूटे पीक और उठी लाली ओठ अनूप। अतिशोक्ति अलंकार के उदाहरण। अब कहना ना होगा कि ऊपरी उद्धृत उदाहरणों में से अधिकांश बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण है। वास्तव में यही बिहारी का प्रकृति क्षेत्र भी माना जा सकता है। इन अलंकारों का भी मुख्य उद्देश्य है भाव या रस का उपकारक होना। चमत्कार पूर्णता के साथ साथ इनका रसाक्षिप्त होना भी आवश्यक है। इसमें वैदग्ध उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया है जहां संवेदात्मकता से उसका साथ छूट जाता है। प्रत्येक अलंकार प्रत्येक संदर्भ में औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता। उपमा और रूपक के प्रयोग में बिहारी को प्रायः सफलता नहीं मिल पाई है, किंतु विरोधमूलक अलंकारों में उन्होंने पर्याप्त कुशलता का परिचय दिया है। बिहारी अपनी सजगता के लिए प्रसिद्ध है। यह सजगता शब्दों के प्रयोग, वाक्य तथा अलंकार विन्यास में सर्वत्र दिख पड़ती है। उपमा और रूपक का संबंध संवेदना की जिस गहराई से है वह बिहारी में नहीं है। इसलिए चमत्कार के चक्कर में फंसे रहने के कारण उनके प्रयोग में वे संवेदना से प्रायः असंपृक्त हो गए हैं। विरोधमूलक अलंकारों में उनको अपना स्वाभाविक क्षेत्र मिल गया। अत्युक्ति चमत्कार की चरम सीमा। लोक कल्पना की सीमा में न आने वाली जिन उहाओं का आधार बिहारी ने अपनी अत्युक्तियों में लिया है वे एकदम संवेदना विरहित हैं। कहीं कहीं तो वे एकदम उपहासास्पद हो जाती हैं। रीतिकाल के अनेक कवियों पर फारसी कविताओं का प्रभाव पड़ा है, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का। अत्युक्तियाँ उनके बुरे पक्ष मुवालगा से आत्यंतिक रूप से प्रभावोत्पन्न है। उदाहरणार्थ, पहला, सीरे जतननी सिसिर ऋतु सही बिरहिनी तन ताप बसीबे को ग्रीसम दीननी परयो परोसिन पाप। दूसरा, आरे दय आलय बसन जाड़े हूँ की राती साहस ककय सनेह बस सखी सबै ढिक जाती। तीसरा, औंधाई सीसी सू लखी बिरह बरती बिललात बीच ही सुखी गुलाब गौ छीटो छुई न गात। शब्दालंकार। अर्थालंकारों की भांति यदि शब्दालंकार रस पोषक होकर आते हैं तो उनकी उपयोगिता में कोई संदेह नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वस्तुतः शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही रस के उपयुक्त साधक भी बन सकते हैं और बाधक भी हो सकते हैं। परंतु जिस काव्य में केवल शब्दालंकार ही झंकार उत्पन्न करता है, अर्थ का भार कम होता है, वह एक प्रकार की असांद्र अनुभूति जनक आवेग का कंपन उत्पन्न करता है। न तो वह संगति की अबाध गति उत्पन्न कर पाता है, न अर्थ जगत से संपूर्ण रूप से विच्छेद ही कर पाता है। उसके शब्द बराबर बाह्य सत्ता से श्रोता का संबंध स्थापित करते रहते हैं और स्वर के स्वच्छंद प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। अर्थ भारहीन शब्दालंकार न तो काव्य की गाढ़ अनुभूति पैदा करते हैं और न ही संगीत का प्रवाह ही। वे दोनों केवल घटिया प्रवाह ही उत्पन्न कर सकते हैं। रीतिकाल के कवियों में शब्दालंकार के प्रयोग बहुत हैं, पर अधिकतर वे काव्य के घटिया प्रभाव को उत्पन्न करके रह जाते हैं। अर्थ की बाह्य सत्ता से उनका जितना संबंध होता है उतना रमणीयता करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। शब्दालंकार में मुख्यतः अनुप्रास श्लेष और यमक के प्रयोग बहुत हुए हैं। रीतिकाल का कोई ऐसा कवि न मिलेगा जो अनुप्रासों के चमत्कार से घिरा हुआ ना हो। कभी कभी तो यह दो दो तीन तीन चरणों तक चलता रहता है। अनुप्रासों का अर्थ से कोई संबंध नहीं है, फिर भी रीति कवियों को इनकी क्रीड़ा कुछ ऐसी रुचिकर प्रतीत हुई कि यह उनकी शैली का अंग बन गया। बिहारी के कुछ उदाहरण देखिए। सहित सनेह सकोच बस स्वेद कंप मुसुकानी धर की ढार ढुरी ढिग भई ढीठ ढिठाई आए। उनके अधिकांश दोहों में अनुप्रास का चमत्कार दिखाई देगा, पर इस काल के अन्य कवियों की तुलना में बिहारी में संयम और संतुलन अधिक दिखाई देता है। श्लेष में चमत्कार के साथ ही अर्थभार भी उचित मात्रा में होता है। स्वभावोक्ति को छोड़कर यह अन्य अलंकारों का सहायक होता है। श्लेष पुष्णाति सर्वासु प्रायो वक्रोक्तिसु श्रियम, ये डंडी का कथन है। अभिनव गुप्त का कहना है कि यह उपमा गर्व अलंकारों का सहायक सिद्ध होता है। बाण के मतानुसार श्लेष को अक्लिष्ट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि संयमपूर्ण ढंग से प्रयुक्त होने पर यह अलंकारों का सौंदर्य विधायक होता है। हाँ, उससे नाना अर्थ निकालने की चेष्टा उसको विकृत कर देगी। कात के मतानुसार अलंकारियों और नानार्थवादियों ने इनका अत्यधिक दुरुपयोग किया है। डॉक्टर राघवन ने परवर्ती काल के पंडितों के संबंध में बताया है कि क्लिष्ट शब्दों या पदों के बिना उनका लिखना असंभव था। कभी उनके द्वारा हम दो विचारों में सादृश्य भर स्थापित कर पाते हैं और कभी कवियों की मौलिकता पर संतुष्ट हो जाते हैं और भाषा पर उनके अधिकार की दाद देने लगते हैं। बिहारी ने जहाँ पर श्लेष का प्रयोग किसी उपमा गर्व अलंकार को पुष्ट करने के लिए किया वहां पर तो यह उसका उपकारक सिद्ध हुआ है, अन्यथा नहीं। कुछ उदाहरण देखिए। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह, तव प्रकाश करे तीतव भरिय जीतो सनेह। दूसरा, आवत जात न जानियत तेजही तजी सियरान, घरै जवाई लो घट्यो खरो पूस दिन मान। पहले उदाहरण में श्लेष से पुष्ट रूपक है, दूसरे से पूर्णोपमा। पहले में सगुण और स्नेह चमत्कार होने के साथ साथ रूपक के निर्वाह में पूर्ण योग देते हैं। दूसरे दोहे में मान को भी पूर्णोपमा का उपकारक कहा जाएगा। अब चमत्कार खड़ा करने के लिए कुछ उदाहरण देखिए। पहला, अंजो तरोणा ही रहयो, श्रुति सेवक इक अंग, नाक वास बेसर लहयो, बसी मुकुतन के संग। दूसरा, कुढंग कोप तजी रंग रली, करत जुवती जग जोए, पावस गूढ़ न बात यह, बूढ़ नहु रंग होए। पहले उदाहरण के श्लेष पर तो बिहारी की चमत्कारिता की दाद दी जा सकती है। दूसरे उदाहरण में रंग का असक्त सादृश्य प्रस्तुत किया गया है। यमक प्रायः प्रयत्न साध्य होने के कारण कवि को रस समाहित नहीं रहने देता। श्रृंगार रस में तो यह और भी अनुपयुक्त ठहरता है, पर बिहारी ने इस अलंकार का भी प्रचुर प्रयोग किया है। रस कविता का प्राण है और अलंकार उसका पोषक। अलंकार का प्रयोजन भावानुभूति को सांद्र बनाता है, यही उसके कार्य की सीमा है। शब्दालंकार हो चाहे अर्थालंकार, दोनों साध्य हैं। काव्य प्रक्रिया में वे सहज ही योग देते हैं, इसलिए उन्हें रसाक्षिप्त और अपृथग्यत्न निर्वृत्ति कहा गया है। कवियों के रसोपासक होने का कारण बताते हुए महिम भट्ट ने कहा है, विनोद करसाप करसाभ्याम स्वदंते अर्थाना जातु चित्त, तदर्थम एव कवियो अलंकारान्य परुपासते। डॉक्टर राघवन ने अलंकार के विषय में कहा है, इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर अ लेटर डे स्कॉलर टू राइट एक्सेप्ट इन डबल इंटेंडर, एंड इफ वी टेक वर्क लाइक बदन सुभाष वी कैन रेयरली फाइंड देयर अ वर्स विच हैज नॉट गॉट टू मीनिंग्स। समटाइम्स वी आर एबल टू सेट अप सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द आइडियाज, एंड समटाइम्स वी आर लेफ्ट टू सेटिस्फाई आवर सेल्व्स विद द मेयर प्लेजर ऑफ ओरिजिनलिटी एंड एडमायर द ऑथर्स कमांड ओवर द लैंग्वेज। डॉक्टर राघवन, सम कॉन्सेप्ट ऑफ अलंकारास। यहाँ ये शीर्षक समाप्त होता है।